धवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 13। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश।
ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्जायारं नमो लोए सौवसाहुनं अन्ताय मज्जहीनं दशदशयचावधीरं परमजिनं वोच्छं नमिवोणंतरं अनंत उत्तुंगसन्नमय दुग्गेजं।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें प्रथम खंड है जीवस्थान नामक और अपना विषय है अंतरानुगम। अभी हम पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 131 पर आ गए, 131। संयम मार्गना अपनी चल रही थी और उसमें सामायिक और छेदोपस्थापना की बात चल रही थी। उसमें हमने 7 गुणस्थान तक का अंतर देखा था। अब यहाँ पढ़ते हैं 268 नंबर का सूत्र। उपशामक का भी देख लिया था हमने। दोन्नम खवाणम ओघम, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकों का नाना और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। यह सूत्र सुगम है। देखो, नाना जीवों की अपेक्षा क्या कहेंगे हम, एक समय से लेकर 6 महीना क्षपक की बात है ना, क्षपक श्रेणी की बात, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। अब आते हैं परिहार शुद्धि संयम। परिहार शुद्धि संजय देशु, ये परिहार शुद्धि संयम क्या होता है तो हमने देखा ना कि तो हाँ, यानी 30 वर्ष तक तो सुखी जीवन बिताया, यानी सुखी गृहस्थ जीवन बिताया। फिर मुनि दीक्षा अंगीकार की, 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान पूर्वक अभ्यास किया, तो उनके विशिष्ट परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। यानी हिंसा का त्याग करके उनके सारे प्रवृत्ति कैसे होती, उसकी विशेषता होती उनमें। यानी इवन वर्षा काल में भी गमन आदि भी करे तो उसमें हिंसा नहीं होती, हिंसा को टाल कर सब हो जाता। तो ये परिहार विशुद्धि संयमाओं के जो गुणस्थान 6ठा और 7वां दो ही है। तो परिहार शुद्धि संयदेशु पमत्ता पमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चन अथ्य अंतरम निरंतरम। परिहार शुद्धि संयतों में प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। इसका अर्थ मुनि जैसे 6ठा 7वां गुणस्थान हमेशा है, तो परिहार विशुद्धि वाले भी हमेशा पाए जाएंगे, यानी इनका कभी अभाव नहीं रहेगा। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमुहूर्तम, 131 पृष्ठ पर परिहार विशुद्धि वालों की बात है। उनका गुणस्थान 6ठा 7वां है, उसमें एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे यानी 7वें वाला 6ठे में आकर वापस गया, 6ठे वाला 7वें में आकर वापस लौटा, तो उसका जघन्य अंतर कहेंगे। जैसे परिहार शुद्धि संयम वाला कोई एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत होकर सर्व लघु काल से प्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। यानी वो 6ठे 7वें का भी जघन्य उत्कृष्ट जो अंतर्मुख काल है उसकी अपेक्षा बात है। इसी प्रकार परिहार शुद्धि संयमी अप्रमत्त संयत को भी प्रमत्त गुणस्थान के द्वारा अंतर को प्राप्त कराकर अंतर कहना चाहिए। ये तो जगन अंतर की बात की। अब कहते उपकस छठा सातवें में जाके वापस आया, वो छठे का अंतर, और सातवें का अंतर वो सातवां छठे में आकर वापस लौटा, तो सातवें का अंतर।
गुणस्थान का अंतर बता रहे थे,
नहीं, गुणस्थान का अंतर, मार्गणा का अंतर नहीं है, गुणस्थान का अंतर। परिहार विशुद्धि कायम रहते हुए छठे का अंतर कब होगा? जब सातवें में जाके लौटेगा। सातवें का अंतर कब होगा? छठे में जाके लौटेगा। तो लघु अंतर्मूर्त में लौटेगा तो जघन्य का, बड़े अंतर्मूर्त में लौटेगा तो उत्कृष्ट अंतर काल ने अंतर। मार्गणा का अंतर तो परिहार विशुद्धि में, जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त होगा, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा। मार्गणा का अंतर नाना जीवन की अपेक्षा बात नहीं, एक जीव की अपेक्षा। परिहार विशुद्धि छूटी और फिर वापस हुई तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा तो हम कहेंगे ना, क्योंकि ऊपर गया तो उनके तो परिहार विशुद्धि से अर्ध पुद्गल परावर्तन नहीं होगा ना परिहार विशुद्धि वालों का, ऐसा लगता है। मार्गणाओं का अंतर कहाँ हो गया अपना? मार्गणाओं का अंतर देखा नहीं ना हमने, मार्गणाओं में गुणस्थान देखे, मार्गणाओं के अंतर नहीं देखे। क्योंकि परिहार विशुद्धि प्राप्त होता है तो क्या वो अर्ध पुद्गल परिभ्रमण करता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। यानी जैसे हम उपशम श्रेणी के लिए लगाते हैं क्या वैसे लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते है? कहीं आती है बात तो देखेंगे। 271 उपकस्येन अंतोमहोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। वो मूर्स्व करना। इस सूत्र का अर्थ जैसे जघन्य अंतर बतलाए हुए कहा है उसी प्रकार से कहना चाहिए। विशेषता यह है कि यहाँ पर सर्व दीर्घ काल से पलटाना चाहिए, यानी वो अन्य गुणस्थान में अधिक यानी बड़े अंतर्मूर्त तक रखे सर्व दीर्घ काल, उससे यथा योग्य जो होगा। अब 132 प्रश्न पर आते हैं। सुहम सांप्राय शुद्धि संजदेशु, ये सूक्ष्म सांप्राय संयमी यानी 10 गुणस्थान वाले। अभी उसका गुणस्थान एक ही गुणस्थान है, उसमें गुणस्थान पलटे कम पलटने का सवाल ही नहीं है। सुहम सांप्राय वो समानम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्य न एक समय। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में सूक्ष्म सांप्राय उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। यह सूत्र सुगम है। उपकस्येन वासपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, यानी जो उपशम श्रेणी का अंतर है वही यहाँ पर उसका अंतर हो। यह सूत्र भी सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च नथी अंतरम निरंतरम, क्योंकि एक जीव जो सूक्ष्म सांप्राय में आया है अगर ऊपर चला जाएगा 11वें में तो यथाक्यात हो जाएगा, मार्गणा बदल जाएगी। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि प्राप्त किए गए संयम के विनाश हुए बिना अंतर को प्राप्त होने के उपाय का अभाव है। प्राप्त ने सूक्ष्म सांप्राय संयम है तो उसका सूक्ष्म सांप्राय संयम का विनाश हुआ है नहीं क्या? या तो नीचे गया तो सामयिक छदोपस्थापना हुआ, ऊपर गया तो यथा क्या संयम हुआ, तो उसके बिना तो पलटने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यानी गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय रहते हुए गुणस्थान पलट जाए वापस लौटे तो नहीं हो सकता। अब खवानम ओगम, सूक्ष्म सांप्राय संयम एक क्षपकों का अंतर ओग के समान है, तो क्षपक श्रेणी का जो अंतर है वही यहाँ सूक्ष्म सांप्राय संयमिक क्षपकों का अंतर कहेंगे। नाना जीवों की अपेक्षा पहले बात करेंगे, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर छह मास के साथ तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव, ऐसे भी क्षपक श्रेणी में अंतर एक जीव की अपेक्षा होता नहीं। और दूसरी बात सूक्ष्म सांप्राय है, अर्धपुद्गल लिया है, हाँ वो तो ठीक है। ये आपका प्रश्न था ना परिहार विशुद्धि का, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर मार्गना का अर्धपुद्गल पर आवर्त। वो तो कम कर देना ना, पहले उसने समय दर्शन प्राप्त कर, हाँ समय दर्शन प्राप्त हुआ तब से अंतर गिनेंगे। मान लेते सम्यक और संयम एक साथ भी ग्रहण किया तो भी वो आठ वर्ष तो गिनने पड़ेंगे पहले। ठीक है ना, उसमें से 30 वर्ष वो यानी वो समय दृष्टि का, अर्धपुद्गल कब से गिनेंगे, सम्यक को प्राप्त करने के बाद। तो सम्यक को प्राप्त करने के बाद अगर गिनते हैं, हाँ तो ऐसा भी ले सकते हैं ना, संयम और वो एक साथ ग्रहण किया और बाद में 8 वर्ष क्यों लिए, वो तो इसके लिए संयम धारण करने के बाद 8 वर्ष तो ठीक है, यानी उन्होंने वो सम्यक तो पहले प्राप्त किया 30 साल में, ऐसा लिया।
परिहार विशुद्धि धारण करते हुए जीवों को भी मिथ्यात्व में जाने,
हाँ ना, अर्धपुद्गल परावर्तन मो भी भ्रमण करेंगे। वही तो मैंने बोला ना, उत्सम श्रेणी में जैसे घटित करते हैं कुछ कम अर्धपुद्गल, वैसे उसमें भी होगा। देखो दसवें वाला संयम कब है, दसवें में ही है, तो दसवें से ग्यारहवें में गया या तो बारहवें में गया, तो यथाख्यात संयम हो गया, संयम बदल गया, हमें वही संयम रखते हुए गुणस्थान पलटाना है, वो तो संभव नहीं है। सूक्ष्म सांप्राय संयम ही रखो और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पलटाओ, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। नवे में गए तो सामायिक छेदों पर स्थापना, ऊपर गए तो यथाख्यात संयम, कैसे जाएगा, दसवें वाला नवे में जाकर फिर दसवें में आएगा,
नहीं।
अरे पर उसका सामायिक छेदों पर स्थापना चालू होगा ना, मार्गणा वही रखनी है, जैसे हम समय दृष्टि की मार्गणा थी हमारी, समय मतिशुत ज्ञानी वाला था, तो उसको हमने नीचे लाया फिर ऊपर चढ़ाया, वो तो हो सकता है, वो मार्गणा वही की वही रही, यहाँ संयम ही पलट जाएगा, इसलिए एक जीव की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं हो सकता। परिहार विशुद्धि मार्गणा का अंतर पूछ रहे थे, यहाँ वो नहीं, यहाँ की बात अलग है, इसमें छठे से सातवें में गया वापस आया, सातवां वाला छठे में गया वापस आया, लघु अंतर मूर्त में आया तो जघन्य अंतर, बड़े अंतर मूर्त वापस आया तो उत्कृष्ट अंतर। यहाँ प्रश्न मार्गणा के अंतर संबंधी चर्चा चल रही थी हमारी, कि परिहार विशुद्धि पहले भव में प्राप्त किया उन्होंने, वो सब कंडीशन से अप्लाई, और फिर अंत में जाके अंतिम भव में उन्होंने प्राप्त किया। अर्धपुद्गल परावर्तन में कुछ कम कर देना, क्योंकि वो सम्यक तो प्राप्त करने के बाद हम अर्धपुद्गल परावर्तन गिनते हैं, तो सम्यक को प्राप्त करेंगे मुनि बनेंगे, फिर वो 9 साल की वो 8 साल की बात है ना, तीर्थंकर के पादमूल में रहे, फिर वो परिहार विशुद्धि प्राप्त हुई, और फिर अंत में जाना है, अंत में जाने ही उन्हें परिहार विशुद्धि के बाद भी वो क्षपक श्रेणी के वो अंतर्मूर्त लेना है। मार्गणा में गुणस्थान ही लगा रहे अभी तक हम सब जगह, वो मार्गणा कहाँ, तो हमारी चर्चा चल रही थी कि परिहार विशुद्धि वाले भी, जैसे उपशम श्रेणी वाला भी अर्ध पुद्गल परावर्तन तक जा सकता है, तो परिहार विशुद्धि विशेषता है, तो क्या वो भी जो इतने घूम सकता है वो भी नीचे मिथ्यात्व में जाकर हो सकता है? यह हम सूक्ष्म सांप्रदायिक शब्दों का अंतर देख रहे हैं, तो एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से ओह के साथ समानता पाई जाती है। अब 276 सूत्र, यथा खाद विहार शुद्धि संजदेशु अकसाई भंगो, यथाख्यात विहार शुद्धि संयतों में चारों गुणस्थानों के संयमी जीवों का अंतर अकसाई जीवों के समान है। तेजल कौन से चार गुणस्थान? हाँ, 11, 12, 13, 14। तो 11 का अंतर कितना होगा? 11 का अंतर करना है। जाने दो ना, फिर दोबारा 11 में लाएंगे तो संयम बदल 11 में से नीचे आएगा तो संयम पलट जाता है, उसी संयम के रहते हुए तो नहीं हो सकता। हाँ, नाना जीवन की अपेक्षा कहेंगे हम 11वें के लिए पृथक, यानी एक समय से लेकर वर्ष पृथक, 12वें के लिए एक समय से लेकर 6 महीना, नाना जीवन की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा तो उन दोनों का अंतर है ही नहीं। 13वें में ना नाना जीवन की अपेक्षा अंतर, ना एक जीव की अपेक्षा। 14वें के लिए नाना जीवन की अपेक्षा एक समय से 6 महीना, जो क्षपक श्रेणी का अंतर होता है वही, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। ख्याल में आई ना बात? 12वें
के लिए क्या बताया, अंतर्मुहूर्त से?
अंतर्मुहूर्त नहीं, एक समय से, वो नाना जीवन की अपेक्षा 6 महीना, वर्ष पृथक, उपशम श्रेणी चढ़ने में वर्ष पृथक जाते हैं ना नाना जीवन की अपेक्षा, उसकी बात है। अभी हम पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ा नहीं, पेज नहीं पलटा है, 133 पेज पर आए, 133, वो पेज नंबर भी गलत पड़ा है, 131 हुआ है, 133 है वो, क्योंकि अकषाय जीवों के यथाख्यात संयम के बिना अन्य संयम का अभाव है, इसलिए वो अकषाय जीवों के समान कह दिया। वहां तो हमने पढ़ा था कषाय मार्गणा में, ऐसा ही पढ़ा था। अब संयमियों की बात सब हो गई, सभी प्रकार के संयमियों की बात हो गई। संजदा संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो, कालादो हुआ है ना, कालादो पोदी, नानेग जीवम, ननेग हुआ नानेग जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। संयता संयतों का अंतर कितने काल तक होता है? तो ये पांचवा गुणस्थान हमेशा ही पाया जाएगा, नाना जीवन की अपेक्षा कभी भी अंतर नहीं रहेगा, मनुष्यों में भी और तिरियंचों में भी, पांचवें गुणस्थान वाले हमेशा हो गए। तो कहते एक जीव की अपेक्षा तो अंतर होगा कि नहीं होगा? कैसे घटित करो, पांचवे से कहां ले जाएगा, वापस लाएंगे, चौथे में ले जाओ और अंतर्मुहूर्त में वापस लाओ, तो चौथे में गया तो असंयत हुआ, गुणस्थानों में तो घटित हुआ था, गुणस्थानों में लघु का अंतर्मूर्त में उसको वापस लाया था, अन्य गुणस्थान करेंगे, अरे यहाँ संयमा संयम पलटेगा। इसलिए कहते नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि अपने गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान के ग्रहण करने पर मार्गणा का विनाश होता है। हमें मार्गणा कॉन्स्टेंट रखते हुए गुणस्थानों का अंतर देखना है। केवल जहाँ वो लभ्य पर्याप्त की वगैरह बात की थी, पंचनीय लभ्य पर्याप्त वगैरह वगैरह, तो वहां तो कोई अन्य उपाय नहीं था ना, वो सारे मिथ्या दृष्टि थे, वहां तो मार्गणा का अंतर बताया था और उसमें स्पेसिफिकली लिखा था ये मार्गणा का अंतर है करके, और अन्य गुणस्थान को ग्रहण किए बिना अंतर करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए एक ही गुणस्थान एक ही वो संयम, 10वें में भी ऐसा ही देखा था हमने, यहाँ पर भी ऐसा ही देखा। अब असंयम योग की बात करेंगे, ब्रह्मा असंयतों के गुणस्थान कौन कौन से हैं? नित्यत्व रहना चाहिए। हाँ क्या क्या है एक से चार, एक दो तीन चारों ही गुणस्थान असंयमियों के हैं। तो मिथ्या दृष्टि का अंतर पूछेंगे तो उसको चौथे में भेजकर या तीसरे में भेजकर वापस ला सकते हैं, उसका असंयम नहीं टूटा है। ख्याल में ही बात। अब असंजदेशु मिथ्या दिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्चन अथ्य अंतरम निरंतरम। असंयतों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो हमेशा ही पाए जाएंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतो मुहूर्तम। असंयमी मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और यह हमने सोचा था ना अभी, क्योंकि अन्य गुणस्थान को जाकर अन्य ने तीसरा या चौथा ही लेना, इसमें अंतर को प्राप्त होकर असंयम भाव के नहीं नष्ट होने के साथ ही जघन्य काल से पलटकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीव के अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। अब उक्त जीवों का उपकस सेना 33 सागरोमाणी देशुनानी। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है। यानी मिथ्यात्व में से सम्यक तो प्राप्त किया, लंबे काल तक रखा और बाद में फिर मिथ्यात्व में आ गया, ऐसा जीव लेना। जैसे मोहकर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्या दृष्टि जीव सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न शब्द डालो उसमें, वो वर्णो शब्द है ना ऊपर प्राकृत में, उत्पन्न हुआ, छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया और जीवन के अंतर्मूर्त काल प्रमाण अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पीछे तीर्यंच आयु को बांधकर विश्राम ले मरा और तीर्यंच हुआ, इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तों से कम 33 सागरोपम काल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। आप कहेंगे उसको समय दृष्टि बनाकर देव में भेजो ना, क्या हो जाता है इस जीव को। नहीं, नरकी की बात नहीं है, पहले से ही हम कहेंगे किसी मनुष्य तीरंच ने समय को प्राप्त किया, चौथे में आ गया, चौथे में आ गया तो अभी देव का भोग कराओ ना उसको, चौथे के साथ ही। उसको असंयम ही रखो ना, देव का मनुष्य का, देव का मनुष्य का, ऐसा वो करते रहो। मिथ्यात्व में वो ये कंडीशन जाने दो, मेरा सवाल दूसरा है। यानी देव के मनुष्य के भोग कराओ ना उसको चौथे गुणस्थान में, बाद में मिथ्यात्व में लाओ फिर, क्योंकि वो चौथे के साथ रहकर वो 66 सागर नहीं होते हैं। हमने देखा चौथे पांचवे मिलकर 42 सागर हो सकता है, पर अकेले चौथे के साथ तो 33 सागर से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके कुछ कम 33 सागर इन्होंने एक ही भाव में गठित करके दिया, ये मैक्सिमम इसका हो सकता है ना, इसमें ख्याल में है ना। ये लगातार वो रहने वाला तो पांचवे में भी जाएगा, छठी सातवे में भी जाएगा, ये पहले हमने देखा था, आपको याद है, चौथे और पांचवे के साथ वो अधिक से अधिक 42 सागर तक रह सकते, चौथे पांचवे और संयम धारण करेगा तो ही वो 66 सागर तक उसका समय तो बना रहता है। ये कुछ कंडीशंस हमने देखी थी महाबली में। हाँ देखो, शासन सम्मादिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठी असंयत सम्मा दिट्ठीनम ओघम असंयमी सासाधन सम्य दृष्टि एक कौमा लगा लो ये सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जीवों का अंतर ओघ के समान है। हमने क्या देखा था नाना जी उनकी अपेक्षा याद है? हाँ, एक समय से लेकर पल्ले का ये दूसरे तीसरे दोनों के लिए और चौथे का अंतर कितना देखा था ओघ में? अर्ध पुद्गल चौथे का अंतर बता रहे पूछ रहे चौथे वाले को मिथ्या तो नहीं जो देखो अभी हम पढ़ेंगे नाना जीवन की अपेक्षा तो चौथे का अंतर नहीं होगा क्योंकि सासाधन समय दृष्टि समय मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से पल्लोपम का असंख्यात भाग अंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्लोपम का असंख्यात भाग क्योंकि हमने देखा एक बार सासाधन प्राप्त किया मिथ्या तो नहीं गया और मिनिमम प्रथम ऑप्शन दोबारा प्राप्त हो तो पल्ले का असंख्यात भाग गया और फिर दोबारा सासाधन में आया तो जघन्य से पल्ले का असंख्यात भाग और तीसरे गुणस्थान के लिए जघन्य से अंतर्मुख यानी तीसरे वाला या तो पहले में जाके लौटा या चौथे में जाके लौटा उसका असंयम का असंयम रहा बस। तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल है उसके लिए भी दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए भी यही अंतर है। असंयत समय दृष्टियों में नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है वो निरंतर गुणस्थान निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त वो हमने देखा ना बहुत बार जो मिथ्या समय में जा चुका है वो जो चौथे से पहले में आएगा और वापस जघन्य काल में लौट के आएगा फिर समय में। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध वो अर्ध बराबर करो अर्ध हुआ है अर्ध पुद्गल परिवर्तन है इस प्रकार ओघ से कोई भेद नहीं है। उसका असंयम तो चालू रहा ना चौथे से चौथे में भी असंयम ही था पहले में घूमा अर्ध पुद्गल परिवर्तन के लास्ट में जाके उसने चौथा गुणस्थान प्राप्त किया। जो अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाद प्रथम उपशम करेगा फिर वो तो वेदक होगा फिर शायिक करेगा संयमी होगा क्षपक श्रेणी चढ़ेगा वो सब बात के अंतर्मुख उसमें से कुछ कम कर देना। असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर यद्यपि ज्ञात है तथापि मंद बुद्धि जनों के अनुग्रहार्थ प्ररूपण करते दोबारा बता रहे हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों करणों को करके अर्ध पुद्गल परिवर्तन के आदि समय में प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त हुआ उपशम सम्यक के काल में छह आवलिया अवशेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ यानी उसके छह अवली पहले उसका अंतर चालू हो गया सासाधन में आते ही अंतर को प्राप्त हो पश्चात नहीं अंतर को प्राप्त हो पश्चात शब्द निकाल दो क्योंकि सासाधन के बाद पश्चात अंतर को नहीं प्राप्त हुआ अंतर को प्राप्त हो बाद में पश्चात डाल सकते हैं। अर्ध पुद्गल परिवर्तन तक परिवर्तन करके अंतिम भव में असंयत समय दृष्टि हुआ यानी फिर प्रथम ऑप्शन प्राप्त किया इस प्रकार अंतर प्राप्त हो गया यानी वो प्रथम ऑप्शन का एक अंतर्मुख गिना वो दूसरे नंबर डाला ना उन्होंने। तत्पश्चात अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके विश्राम ले दर्शन मुनि का क्षय करके विश्राम ले ये विश्राम ले इसलिए कहा ये तीन करण परिणाम के बाद अंतर्मूर्त का अन्य कोई कार्य नहीं हो रहा इसलिए विश्राम ले कहते हैं। अप्रमत्त संयत हुआ पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणास्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके क्षपक श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत्त संयत हुआ इनमें ऊपर के छह अंतर्मूर्त और मिलाए से 8, 9, 10, 12, 13, 14 इस प्रकार 15 अंतर्मूर्तों से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। इस प्रकार संयम मार्गणा समाप्त हुई। 282 नंबर का सूत्र है। दंशनानुवादेन, अभी दर्शन मार्गणा की बात है। चक्षु दंशनीसु मिच्छादिक्षिणम ओघम, दर्शन मार्गणा के अनुवाद से चक्षुदर्शनी जीवों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है। ओघ के समान यानी क्या? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से तथा एक जीवगत अंतर्मूर्त मात्र जघन्य अंतर होने से कुछ कम दो छासर सागरों प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होने की अपेक्षा ओघ से कोई भेद नहीं है। यानी वो चक्षुदर्शनी वाला, तो यानी वो चक्षुदर्शनी कौन है? कौन से जीव चक्षुदर्शनी है? और पंचेंद्रिय को कहाँ छोड़ा? चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय। तो उसमें तो पंचेंद्रिय जीव ने अन्य गुणस्थान प्राप्त करके वापस लौटा तो अंतर्मूर्त अंतर हुआ, और मिथ्यात्व का अंतर ऐसे भी हम देखते हैं तो दो छासर सागर प्रमाण हम उत्कृष्ट अंतर, तो उसका चक्षु दर्शन बना रहा या तब तक तो बना रहता है ना?
ये कंटिन्यूअस ऐसा वेदक समय दिख रहा है, ऐसा देख सकते
हैं ना? हाँ हाँ, कंटिन्यूअस वेदक यानी वो तो दो छासर सागर हम देखते हैं उसी में आ गए, उसे कोई भेद नहीं है। यहाँ तो कुछ कम दो छासठ कहते हैं अरविंद भाई, और फिर जब हम वो तीन पूर्व कोटि प्लस दो छासठ, परंतु वो तो वो अलग बात होती है ना। वहां तो हमने उसको मोक्ष भेजा था, क्षायिक करके किया था, क्षायिक नहीं भी किया था तभी भी हमने नहीं, नहीं यहाँ तो कुछ कम दो छासर सागर लेते हैं और वहाँ दो छासठ सम्य दृष्टि बनाया उसको। जरा पेज निकालो कल का, बीच में तीन पूर्व कोटि बढ़ाई थी ना 117 में, तीन पूर्व कोटियों से अधिक 66 सागरों को संहिता संहितों का देखा था। नहीं, मति ज्ञान में रखा उसको, तो वो भी चक्षु दर्शनी है ना, तो उसमें भी इतना अंतर तो कौन, उसको मिथ्या तो में, यहाँ मिथ्या तो में लाना है और वहां उन्होंने उसको पूर्ण करके एक साइक बना के मोक्ष भेजा था, यहाँ वो नहीं ले सकते ना बीच में पूर्व कोटि वाली बात। चलो कुछ कम दो छासठ, दो छासठ हमने देखा था ना, ये पहले छासठ में अंतर्मूर्त बाकी है तो सम्यक मिथ्यात्व में आया, दूसरे छासठ में अभी उसको मिथ्यात्व में लाना है और अंतर्मूर्त पहले उसको मिथ्यात्व में लाना है। पूरा रखते तो कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा पूरा छासठ सागर हो सकता है, अदरवाइज नहीं, यानी उपक्षायिक करने वाला ही पूरा छासठ सागर तक रहेगा उसमें।
तो ये देव और मनुष्य का भाव क्या करेगा?
सब जो कुछ है वो सब मिलके जहाँ कहीं है वो, नरक से निकला हुआ मनुष्य में आया हुआ उसको भी गिन सकते दो शास्त्र साल। 283 सूत्र। अभी हमारी दर्शन मार्गना चल रही, चक्षु दर्शन ही रखना है उसको। शासन सम्मा दिट्ठि, सम्मा मिच्छा दिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो, कालादो हुआ है ना, कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्चो उघम। चक्षु दर्शन ही साधन सम्य दृष्टि और सम्य मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ओघ के समान, यानी एक समय से पल्ले का असंख्या तो होगा, क्योंकि नाना जीवगत जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात भाग है। इस प्रकार इन दोनों की अपेक्षा ओघ के साथ समानता पाई जाती है, क्योंकि ओघ में जो वो प्राप्त करने वाले तो चक्षु दर्शनी है ना। उत्कस से न एक जीवम पड़ुच्च जहन्य न पलिदो मस असंख्य जदि भागो अंतोमोत्तम, जैसे अन्यत्र हमने देखा उक्त जीवों का यानी चक्षुदर्शन सासादन और सम्य मिथ्या दृष्टि, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग और अंतर्मोत, यानी चक्षुदर्शन कायम रहते हुए सासादन का जघन्य अंतर पल्ले का असंख्यात्वा भाग और सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य अंतर अंतर्मोत, यह सूत्र सुगम है। उक्कस्य न वे सागरों में सहस्राणी देशुनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। अभी 2000 सागरोपम में उसको रखना है, उसकी चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति होगी। जैसे अचक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण किया हुआ कोई एक जीव, अचक्षु दर्शन में परिभ्रमण हुआ है ना एकेंद्रिय में, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय ऐसा ले लेना पूरा, यानी अनंत काल एकेंद्रिय में रहा हुआ, एक जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, अभी उसको जल्दी समय तो प्राप्त कराने करा के नीचे लाना है, तो पहले हमें असंगी से उसको देव में भेजेंगे ना, तो पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या वानवंतर देवों में आयु को बांध कर, आयु बांधने के बाद भी अंतर्मुख चला जाएगा, विश्राम ले, देवों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो लंबे अनंत काल भ्रमण करके आया है, पश्चात सासादन गुणस्थान को गया, पुनः मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, यानी सासादन में रहा वो सासादन का काल उपशम सम्यक्त के अंतर्मुख में ही गिन गया, क्योंकि उसी के अंदर वो सासादन में आया था, तो जो उपशम सम्यक्त का अंतर्मुख पूरा हुआ अगर उसमें रहता तो उसी समय वो मिथ्यात्व में आया, सासादन में जाके आया परंतु काल तो उसी का न हुआ, अंतर्मुख उसी में गिना उसको सासादन में, तब अंतर चालू हो गया। चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके, ये 2000 सागर बताए ना चक्षु दर्शनी की स्थिति, अंत में सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पुनः अचक्षु दर्शनी के बंध प्रायोग्य आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण काल रहकर मरा। देखो अभी उसको चक्षु दर्शनी का काल उसका पूरा लिया, अब जाएगा चक्षु दर्शनी में, हाँ तो उसके सांसाधन के यानी शुरुआत में जाता है तो देव में जाता है, फिर मनुष्य में जाता है, तो तीरेंश में भी उसको एकेंद्रीय में भेजना है चक्षु दर्शनियों में, तो वो आवली का सब मिलकर भी आवली का असंख्या तो भाग छोड़कर बाद में मरा, और अचक्षु में उत्पन्न हुआ, अचक्षु दर्शन में। इस प्रकार नव अंतर्मूर्तों से और आवली के असंख्यात भाग से कम चक्षुदर्शनी की स्थिति, चक्षुदर्शनी सासाधन समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर है। समझ में है ना कैसा है? हमें वो स्थिति मालूम हुई तो दोनों बाजू से कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि उपशम समय तो के पहले समय से ही अर्ध पुद्गल परावर्तन गिनना है। अब उसमें से क्या क्या कम करेंगे? वो चक्षुदर्शनी की पूरी स्थिति में से पहले वो असंगी हुआ, फिर देव में गया और सम्यक तो प्राप्त किया। चक्षुदर्शनी में से इतना कम करना है। यहाँ अर्धपुद्गल नहीं गिन सकते, यहाँ तो वो काल हमने वहां से गिन शुरू करते हैं, परंतु हमें ये चक्षुदर्शनी की स्थिति को ही उसमें से रखना है। उसको भले उसका अर्धपुद्गल परावर्तन एक इंद्रिय में बीत जाए, उसको चक्षुदर्शन से अचक्षुदर्शन हो गया तो हमारा अंत तो उसके पहले समाप्त कराना, तो उसको सम्यक तो प्राप्त करके फिर सासाधन में लाके फिर उसको अचक्षुदर्शनी बनाना। दो हजार सागर चक्षुदर्शनी की स्थिति। होता है, परंतु जल्दी में जल्दी उसको समय को उत्पन्न कराना है। ये नरक में जाने वाले तो उसके तो संकलेश हो गए ना, अभी तो उसको विशुद्धि जल्दी कराना है। इसलिए चक्षुदर्शनी सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर कहते हैं। अचक्षुदर्शन की स्थिति को प्राप्त हुआ एक जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या वान यंत्र देवों में आयु को बांध कर विश्राम ले, मरा और देवों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, पश्चात सम्यक मिथ्यात्व को गया, उसका भी अंतर्मुद गिनना ना उसका, और बाद में वो मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, चक्षुदर्शनी की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया, पुनः मिथ्यात्व को जाकर अचक्षुदर्शनियों में उत्पन्न हुआ। अने लास्ट में फिर दोबारा उसको सम्यक तो प्राप्त करके ही फिर सम्यक मिथ्यात्व को लाना है। उसके पहले मिथ्यात्व में आयु भी बांधी थी, वो सब समझ लेना, उसमें अंतर में सब कुछ कर दिया उसने। इस प्रकार 12 अंतर्मूर्तों से कम चक्षुदर्शनी की स्थिति, चक्षुदर्शनी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर है। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 138 पर। असंजत सम्मादिट्ठि पौड़ी जाव अपमत्त संजदानम अंतरम केव चिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चन अथ्य अंतरम निरंतरम, क्योंकि चौथा पांचवा छठा गुण सातवा गुण स्थान तो निरंतर है। असंयत सम्यक दृष्टि से ओ म्य बराबर करना, असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुण स्थान तक चक्षुदर्शनियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवन पड़ुच्च जहन्येन अंतो महोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि इन सभी गुणस्थानवर्ती जीवों के अन्य गुणस्थान को जाकर पुनः जघन्य काल से विवक्षित गुणस्थान को प्राप्त होने पर अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। यानी जो हमने ओघ में देखा था जघन्य अंतर चौथे पांचवें के लिए तो ठीक है, वो अन्य गुणस्थान को छठे के लिए सातवें में जाकर फिर वापस लौटा, और सातवें के लिए उपशम श्रेणी करके लौटा, ऐसा लेना। उपकस्य न बे सागरों में सहस्राणी देशोनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। जैसे अचक्षु दर्शनी जीवों की स्थिति में विद्यमान एक जीव असंगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छिम पर्याप्त जीवों में उत्पन्न हुआ, पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासिया वान व्यंतरों में आयु को बांध कर विश्राम ले, मरण को प्राप्त हुआ और देवों में उत्पन्न हुआ, वहां छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम संयुक्त को प्राप्त हुआ। उपशम संयुक्त के काल में छह अवलिया अवशेष रहने पर शासाधन को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी चौथे गुणस्थान का अंतर चालू हो गया। पुनः मिथ्यात्व को जाकर चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में उपशम संयुक्त को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पुनः शासाधन को गया और अचक्षु दर्शनी जीवों के योग्य आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहकर अचक्षु दर्शनी जीवों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10 अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति चक्षु दर्शनी असंयत समय दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये समझ में आ रही है ना बात? चौथे गुणस्थान के लिए तो देव में पहले उत्पन्न कराया, असंगी बनाकर देव में भेजा, पांचवें गुणस्थान के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते। अब चक्षु दर्शनी संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। जैसे अचक्षु दर्शन की स्थिति में विद्यमान एक जीव गर्भोपक्रांतिक पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, यानी गर्भजों में उत्पन्न कराया, शंका, उक्त जीव को संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छिम पर्याप्तकों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया? समान नहीं, क्योंकि सम्मूर्छन जीवों में प्रथमोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति असंभव है। हमने देखा ना, उनके तो प्राप्त होती है, वो भी सादी मिथ्या दृष्टि हो गए तो उनमें क्षोपशम सम्यक्त प्राप्त हो सकता है। तथा असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण या अनंत काल तक अचक्षु दर्शनियों में परिभ्रमण किए हुए जीवों के वेदक सम्यक्त को ग्रहण करना संभव नहीं है। समझ में आई बात? इतने देर यानी वो अचक्षु दर्शनी में है, वहां तो वही सम्यक्त तो उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि पहले उत्पन्न होकर गया होगा मान लेते हैं, तभी वो तो उसकी उद्वेलना हो गई होगी, है ना? क्योंकि ऐसे जीवों के सम्यक्तोत्पत्ति का विरोध है और न अल्पकाल तक रहे हुए जीव चक्षु दर्शन की स्थिति के समाप्त करने में समर्थ है। समझ में आई बात? नहीं समझे? क्या लिखा यहाँ पर? चक्षु दर्शन की स्थिति यानी 2000 सागर वो कौन पूरी करेगा जो एकेंद्रियों में इतने लंबे काल तक जाके आए? वो उसके 2000 सागर नहीं मिलेगी। हम त्रस की भी स्थिति जब गिनते हैं उसमें भी कंडीशन लगाई थी, एकेंद्रियों में अनंत काल या असंख्यात लोक, ये दो शब्द डाले थे। यहाँ तो असंख्याता संख्यात लोक बताए, वही वो जीव पूरी त्रस की या चक्षु दर्शन की स्थिति कर सकेगा, ये कंडीशन है उसकी। पहले हमने अन्य अन्य वेद वालों में भी, अन्य वेदों में लंबे काल तक घूम के आया है वो जीव इसमें पूरी स्थिति तक रहेगा। किसी भी एक हम देखते मार्गणा का उत्कृष्ट काल तो अन्य में वो लगातार लंबा काल बीता कराने के बाद वो बात पॉसिबल है।
लेकिन सपोज वो एक बार हो गया पंचेंद्रिय तो उसको नहीं मिलेगा
क्या? हो सकता है ना एक इंद्रिय, पर तो एक इंद्रिय में लंबे काल तक जाके आया वो बात, इसको समय तो नहीं होता वो बात नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, चक्षु दर्शन इतने काल से भी वो 2000 टाका नहीं मिलेगा उसको, सपोज एक छोटा भाव कर दिया।
हाँ उसके उसके नहीं होते, यही कहना है। लगातार वहाँ लंबा काल बीत के आया है उसके ये लगातार ये तरस की उत्कृष्ट स्थिति होती है। यहाँ मैं देखा ना असंख्यात असंख्यात लोग, या अनंत काल, चक्षु दर्शनी में रहा हुआ जीव ही चक्षु दर्शन की स्थिति कर समाप्त करने में समर्थ है, यानी 2000 सागर। यानी ऐसा आप सोचेंगे 2000 सागर किया फिर एक इंद्र का एक पर्याय किया फिर 2000 सागर मिलेंगे नहीं मिलेंगे?
आपने अन्य वेद में क्या बोला?
हमने ऐसा ही लिया था ना, वो लंबे काल तक वहाँ या दूसरे वेद से इसमें आ गया, ऐसा ऐसा आया उसमें, ज्यादा बात मैं नहीं उठाई थी उन्होंने, केवल अन्य वेद से इसमें उत्पन्न कराया था, बस इतनी बात आई। यानी 2000 सागर चक्षु दर्शन में वही रह सकता है जो इतने लंबे काल तक एक इंद्रिय आदि में जाता है। हाँ, अचक्षु में कहेंगे एक इंद्रिय इंद्रिय तीन इंद्रिय। हाँ क्या प्रश्न है? हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं ऐड किया हमने, देखो देखो हमने क्या बोला कि चक्षु दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति कितनी 2000 सागर, वो पूरी 2000 सागर उसी जीव को मिलेगी जो चक्षु दर्शिनी में अनंत काल बिता के आया। अब लास्ट पैराग्राफ, तो पहले क्या कंडीशन देखी थी हमने, देखो ऊपर के दूसरा पैराग्राफ में दो लाइन वाला संहिता संहित का उत्कृष्ट अंतर हम देख रहे थे। तो जो अचक्षु दर्शन की स्थिति में विद्यमान एक जीव वो गर्भज पंचेंद्रिय पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, उसमें हम तीर्यंचों में उत्पन्न कराएंगे क्योंकि उनका गर्भकाल छोटा है। अभी लास्ट पैराग्राफ, पुनः वह जीव तीन पक्ष तीन दिवस और अंतर्मूर्त से प्रथमोक्षम सम्यक और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। वो तीन पक्ष की बात हमने पहले भी देखी थी ना, पेज नंबर हाँ 139 भी ऐड करेंगे, 73 और 84 पर देखी थी हमने। पुरुष वेदी और स्त्री वेदी में दो मास लिया था, यहाँ तीन पक्ष तीन दिन लिया संगी पंचेंद्रिय। आगे प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के काल में छह अवलिया अवशिष्ट रहने जाने पर सासादन को प्राप्त हुआ, यानी वो पांचवें गुणस्थान से सासादन में आया, अंतर को प्राप्त हो गया, पांचवा गुणस्थान का अंतर शुरू हुआ। पुनः अंतर को प्राप्त हो मिथ्यात्व को जाकर अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंतिम भव में, अभी उसको पांचवे का है ना, उसको मोक्ष भेज देंगे अंतिम भव में। कृतकृत्य वेदक होकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, इस प्रकार लब्ध अंतर हुआ, यानी अंतिम भव में फिर उसने प्रथम उपशम प्राप्त किया, वो चौथे में रहा, फिर वगैरह वगैरह वो सब ले लेना उसमें। पुनः अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के छह अंतर्मूर्त और मिला है, इस प्रकार 48 दिवस और 12 अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति चक्षुदर्शनी संयता संयतों का उत्कृष्ट अंतर है। कदकर्णी जो यहां पर भी आया शब्द, आगे बढ़ते हैं। चक्षुदर्शनी प्रमत्त संयुक्त का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अचक्षुदर्शनी जीवों की स्थिति में विद्यमान एक जीव, अभी छठे गुणस्थान प्राप्त करने तो अभी मनुष्यों में उत्पन्न करेंगे, मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष से उपशम सम्यक्त और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, पुनः प्रमत्त संयत हुआ, पश्चात नीचे के गुणस्थानों में गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ। यानी पहली बार प्रथम उपशम में रहा, वो भरे हजारों बार हुआ, छठा सातवा, छठे से जब निरकर नीचे आया तो अंतर का चालू हो गया। चक्षुदर्शनी की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंतिम भव में मनुष्य हुआ। पश्चात कृतकृत्य वेदक होकर जीवन के अंतर्मूर्त काल अवशेष रह जाने पर अप्रमत्त संयत होकर प्रमत्त संयत हुआ। यहाँ पर भी कदकरण जो आया, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पुनः अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त और मिला है, इस प्रकार 8 वर्ष 10 अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति चक्षुदर्शनी प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। अब अप्रमत्त की बात करेंगे। चक्षुदर्शनी अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अचक्षुदर्शनी जीवों की स्थिति में विद्यमान एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। नीचे का पैराग्राफ, हाँ वही वही पेज 140 ही चल रहा है। यानी अचक्षुदर्शनी में से चक्षुदर्शनी हुआ, गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष के द्वारा उपशम सम्यक और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, फिर नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हो, चक्षुदर्शनी की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंतिम भव में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। जैसे छठे का देखा वैसे सातवें का देखना। पुनः कृतकृत्य वेदक सम्यक भी होकर संसार के अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ। क्या क्या विशुद्ध अप्रमत्त संयत हुआ, यहाँ तक मैंने पढ़ा। कहाँ प्राप्त है? लास्ट वाला, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ है, बराबर है ना, लब्ध हुआ प्राप्त हुआ की बात है। अंतर यानी समाप्त हुआ उसका, प्राप्त हुआ। अच्छा, अंतर प्राप्त यानी लब्ध हुआ, ये आप यानी अंतर शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, प्राप्त नहीं हुआ यहाँ कहना है, अंतर लब्ध हो गया, बराबर है। हाँ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, हाँ, यानी पूरा अंतर हमको मिल गया। कितना पूरा टोटल अंतर लब्ध हुआ। पुनः आगे के पेज पर 141, प्रमत्त संयत हो, संयत हुआ, संयत हो, अप्रमत्त संयत हुआ। पहली बार अप्रमत्त हुआ तो अंतर तो पूरा हुआ उसका, उसके बाद फिर छठा सातवा होगा ना, फिर अप्रमत्त हुआ। इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त और मिलाए, इस प्रकार 8 वर्ष और 10 अंतर्मूर्तों से कम चक्षु दर्शनी की स्थिति ही चक्षु दर्शनी अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब टू 89, चदुन्नम उवसाम गाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च उगम। चक्षु दर्शनी चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, यह सूत्र सुगम है। तेजल कितना होता है?
एक समय से
वर्ष पृथक उपशम श्रेणी चढ़ने वालों का अंतर। एक जीवम पड़ुच्च जहने न अंतमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। जैसे आठवें उपशामक का अंतर कैसा है, 9, 10, 11, फिर 10, 9, फिर आठवें में आ गया, अंतर हो गया। नौवे के लिए 10, 11, 10, दसवें के लिए केवल 11, और 11 के लिए दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ा। अब उत्कृष्ट अंतर देखेंगे, यही चार उपशामकों का। उक्कसेन बे सागरों में सहसानी देशोनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। जैसे अचक्षुदर्शनी जीवों की स्थिति में विद्यमान एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष के द्वारा उपशम सम्यक कर अप्रमत्त संयत गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त के पश्चात वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, पुनः अंतर्मूर्त से अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया, पुनः दर्शन मोहनीय को उपशमा कर यानी द्वितीय उपशम करके प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हुआ। पुनः अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, उपाशांत हुए, उपशांत मोह, सूक्ष्म सांप्राय, ये सु भी दीर्घ चाहिए, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण संयत होकर तथा नीचे उतर को अंतर को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हुआ यहाँ से। चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंतिम भव में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां पर कृतकृत्य वेदक सम्यक भी होकर संसार के अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ। वहां पर ये अपने को उपशम श्रेणी लास्ट में चढ़ानी है, वहां पर साता रसाता वेदनी के बंध परावर्तन सहस्रों को करके यानी हजारों बार छठे सातवें में गया, साता साता के परिवर्तन हुए, यानी क्या सातवें में केवल साता ही बनती है, छठे में साता और असाता दोनों बनते हैं, ऐसे उसके सहस्रों परिवर्तन करके। हाँ, इस प्रकार देखो, उपशम श्रेणी के योगी अप्रमत्त संयत होकर अपूर्व कर्ण उपशामक हुआ, इस प्रकार अंतर प्राप्त हो गया। यहाँ पर भी प्राप्त ही बताया उन्होंने, लब्ध हो गया। शोभा आपकी आवाज आ रही है। तत्पश्चात अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय, पुनरपि सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत होकर। देखो क्या कहना चाहते, उपशम श्रेणी चढ़ते उसका अंतर तो समाप्त हुआ, अब बाद में उपशम श्रेणी के सारे गुणस्थान करके नीचे हुआ है और फिर वो क्षपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष गया, ऐसा लेना। क्षपक श्रेणी पर चढ़ा, इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त और मिलाए, इस प्रकार 8 वर्ष और 29 अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति चक्षुदर्शनी अपूर्वकरण उपशामक का उत्कृष्ट अंतर है। ठीक है ना, उसको अचक्षु में क्यों लाना,
जो होता सारा पूरा
हो। हाँ, क्योंकि अचक्षु लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उपशम श्रेणी के बाद फिर नीचे लाना, मिथ्यात्व में जाना, फिर आयु का बंद कराना, ये तो और बड़ा हो जाता ना। बाद वाला अंतर्मुच बड़ा हो जाता है, उसके बदले एक क्षपक श्रेणी वाला अंतर्मुच, 6 अंतर्मुच छोटे हैं, इसलिए उसको लिया। कोई जो ऐसा भी हो सकता है ना, इतना रहा, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ी, फिर भी नीचे जाकर एक इंद्रिय में गया, ऐसा भी हो सकता है। हमें उत्कृष्ट अंतर के लिए ये पॉसिबिलिटी लेनी, एनी अदर पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके अंदर। आप पूछेंगे पहले अंतर समाप्त करके देव में क्यों नहीं भेजा, और फिर वो चक्षुदर्शन ही रहता ना, चक्षुदर्शन की कंडीशन है ना, इसलिए उसको नहीं भेज सकते। जैसे श्रीवेदी में हमने श्रीवेद में रखा था, पहले वो में एक बार श्रीवेदी में तो उतरते समय लिया, अंतर चालू किया, फिर स्त्रीवेद में रखा, अंतिम भव में उपशम श्रेणी चढ़ा के मरकर देव में भेजा, वहां तो वो पॉसिबल हुआ था क्योंकि उनको वेद बदलना था। सात, फिर छठा सातवा हजारों बार होगा, फिर दोबारा चढ़ेगा श्रेणी, दोबारा द्वितीय ऑप्शन भी करना पड़ेगा उसको, पहली बार करना है तो
वो सब अंतर्मूर्त में आ
गया, सब अंतर्मूर्त में ही आ गया, एक जीव की अपेक्षा दोबारा चढ़ेंगे तो एक जीव की अपेक्षा ले रहे हैं ना, नाना जीव की अपेक्षा तो उपशम श्रेणी का अंतर देखते हैं, वर्ष पृथक्त्व किसके लिए, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट पहले भाव में एक बार उसको उपशम श्रेणी चढ़ के उतारना, फिर अंतिम भाव में, और अंतिम भाव में उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ा, उसके सारे अंतर्मूर्ति गिने यहाँ पर। पहला कौन सा, जगन्य अंतर्मूर्त में 11 के लिए नीचे उतार कर फिर चढ़ाया, और बाकी तो चढ़ने वाले और उतरने वाले में अंतर बीच में घटित होता है, 8वें के लिए, 9वें के लिए, 10वें के लिए, तो एक ही श्रेणी में अंतर घटित होता है, एक ही बार श्रेणी चढ़ने में, 11वें के लिए दोबारा श्रेणी चढ़ना है जगन्य अंतर के लिए। ये लिया ना हमने, क्षपक श्रेणी पर चढ़ा, वो तो हो गए सब। इसी प्रकार चक्षुदर्शनी शेष 3 उपशामकों का भी अंतर जानना चाहिए, विशेषता यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामक के 27 अंतर्मूल, सूक्ष्म सांप्राय उपशामक के 25 अंतर्मूल और उपशांत कषाय के 23 अंतर्मूल कम करना चाहिए, क्योंकि उसको प्राप्त होने में और टाइम लगेगा, वो अंतर में चला जाएगा तो बाद में उसके जो हम कम करते हैं स्थिति में से वो घटेगी। चदुन्नम खवगाणम ओगम, चक्षुदर्शनी चारों क्षपकों का अंतर ओघ के समान है। यह सूत्र सुगम है। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय से 6 महीने, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। ये चारों क्षपक ही क्यों लिए तेजल, अयोगी को क्यों नहीं लिया? हमेशा चार क्षपक के लिए अयोगी को भी ले क्या होगा उनका, उनका क्या होगा, उनकी कौन सी मार्गन है, सहयोगी अयोगी की कौन, उनमें कौन सा दर्शन है? केवल दर्शन। हाँ, अचक्षु दंशनीसु मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी जाव खीन कसाय वीदराग चदुमत्था उगम। अचक्षु दर्शनियों में उनके गुणस्थान कौन से, अचक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी ने अकेले एक ही दिन अचक्षु दर्शनी कहने से वो जो चक्षु दर्शनी है उनके अचक्षु दर्शन भी तो होता है, यानी अचक्षु दर्शन प्रत्येक जीव को अनादि से है और वो 12वें के अंत तक रहेगा। यानी जो जो कुछ ओघ में होता है वो सारा अचक्षु दर्शनी में होगा, क्योंकि उसमें एक इंद्रिय भी आ गए, द्विंद्रिय, तीन पंजीरी, सारे कुछ आ गए, सभी कुछ आ गए। तो अचक्षु दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय वितराग चदमस्त गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि ओघ से इनके अंतर में कोई भेद नहीं। ओघ की बात कहो या पहले से 12 गुणस्थान तक, सबको अचक्षु दर्शन तो है ही है। यानी जो हमने 12 गुणस्थान तक के अंतर देखे वो सब इसमें हो जाए। ओधि दंशनी ओधि नाणी भंगो, अवधि दर्शनी जीवों का अंतर अवधि ज्ञानियों के समान है। हमने देखे थे गुणस्थान
4 से 12
केवल दंशनी केवल नाणी भंगो, केवल दर्शनी जीवों का अंतर केवल ज्ञानियों के समान है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। यानी सहयोग केवली में अंतर नहीं है नाना जीवों की अपेक्षा, अयोग केवली में एक समय से 6 महीना, एक जीव की अपेक्षा, दोनों का ही अंतर नहीं। इस प्रकार दर्शन मार्गना समाप्त हुई। अब लेच्छा मार्गना, लेसानुवादेन किन्नलेस्य नीललेस्य काउलेस्येषु मिच्छादिट्ठि असंजद अंसजद हुए ना, असंजद स के ऊपर बिंदु, असंजद सम्मादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदि नाना जीवम पड़ुच्चन अत्यंतरम निरंतरम। क्या कहते हैं, यानी ये सभी लेशाओं में मिथ्या दृष्टि जो हमेशा ही पाए जाएंगे, कोई अंतर नहीं है। लेशा मार्गना के अनुवाद से कृष्ण लेशा नील लेशा और कापोत लेशा वालों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। क्योंकि चौथे गुणस्थान तक तो 6 लेशा पाई जाती है, तो ये 3 अशुभ लेशा में भी हमेशा चौथे गुणस्थान वाले भी पाए जाएंगे, यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतर्मूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, पहले का अंतर कब कहेंगे, चौथे में जाके वापस लौटे, चौथे का अंतर पहले में जाके वापस लौटे, पहले में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है। तो कहते हुए रेशा नहीं पलटेगी, तो ऐसा अंतर कैसे घटित होगा? देव देव में नहीं भेजना है, यहाँ कृष्ण नील कपोत है ना, उनकी लगातार वही लेशा रहती है, भले उसके अंश कम ज्यादा, जो उसकी विशुद्धि कम ज्यादा होती है उसकी बात नहीं है, लेनी लेशा वही की वही है, तो उनमें ये बात घटित होगी। क्योंकि मनुष्य और तिरंचों में एक ही लेशा कायम नहीं रहती, वो तो लेशा पलटती रहती है। जैसे सातवीं पृथ्वी के कृष्ण लेशा वाले, पांचवी पृथ्वी के नील लेशा वाले और प्रथम पृथ्वी के कापोत लेशा वाले मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि नारकी जीव अन्य गुणस्थान को जाकर अल्प काल से ही लौट कर उसी गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों गुणस्थानों का जघन्य अंतर लब्ध हुआ। आप कहेंगे खाली मनुष्य में जाएगा ना, एक तो पहले वाला चौथे में जाएगा तो कृष्ण लेशा में नहीं जाएगा, तीन शुभ लेशा में जाएगा। एक बात अब आप कहेंगे चौथे वाला है, और चौथे वाला है अपनी किसी एक लेशा में, तो कृष्ण लेशा होकर पहले में गया है, गया पर वापस चौथे में आने के लिए शुभ लेशा होनी चाहिए उसकी। और पहले में जो अंतर्मुहूर्त है उसमें लेशा का परिवर्तन हो जाए, जैसे योग हमने देखा वही योग नहीं रहता, तो लेशा भी वही नहीं रहती, कषाय भी वही नहीं रहता। लेशा क्या है? कषाय प्लस योग हो जाता है, तो सब पलट जाते हैं। ये समझाने के लिए छठी में भी कृष्ण होता है, चौथे में भी नील होता है, कुछ भी ले सकते, पहले दूसरी तीसरी कोई भी ले सकते। ये कपोत लेशा के समझाने के लिए तीन अलग अलग ले लिए। तम जाने जैसे, जैसे करते फॉर एग्जाम्पल, तो यही लेना है केवल, ऐसा नहीं है, ये दोनों ने कोई भी ले लिया। इस प्रकार दोनों गुणस्थानों का जघन्य अंतर लब्ध हुआ। उक्त सेन 33 वमाणी देशुनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ क्रमशः कुछ कम 33, 17 और 7 सागरोपम है। जैसे कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले तीन मिथ्या दृष्टि जीव क्रम से सातवीं, पांचवी और तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न हुए। अभी यहाँ तीसरा लिया क्योंकि वहां के आयु मैक्सिमम लेना कापोत लेशा के साथ वाले। छह पर्याप्तियों से, युक्ति बराबर करो, पर्याप्त हो विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त को प्राप्त कर, अंतर को प्राप्त हो, आयु के अंत में मिथ्यात् को प्राप्त हुए। देखो दोबारा उसी लेशा में मिथ्यात् को प्राप्त कराना है। आप कहेंगे सम्यक्त के साथ निकालो ना उसको, मनुष्य में लाओ, तो मनुष्य में भले वो कृष्ण के साथ आएगा परंतु वो मिथ्यात् में नहीं जाएगा उसी लेशा के साथ। क्योंकि जब अपर्याप्त काल में कृष्ण से नील वगैरह वगैरह होते होते बाद में उसको मंत्रमुख के पश्चात वो जाना है, तो इन्हें पर्याप्त होने के बाद वो मिथ्यात्व में जा सकता
है।
मनुष्य में आया तो अगर कृष्ण लेशा लेकर आया मनुष्य में, तो मनुष्य में आकर वो वहां से
अपर्याप्त में
पलट जाए। हाँ समय को के साथ क्यों नहीं लाया, ऐसा प्रश्न है, तो उसी नरक में उसको मिथ्यात्व में ले जाना है। यह लिखा ना, समय को अंतर को प्राप्त, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पश्चात मरण कर मनुष्यों में उत्पन्न हुए। मनुष्यों में इसलिए उत्पन्न कराया क्योंकि सातवीं पृथ्वी का नारकी तो बाद में ही उसको आयु का बांध करेगा, परंतु ऊपर के सम्यक्त में भी आयु बांध की, मनुष्य की आयु बांधी, और मिथ्या तो में जाकर भी मनुष्य में उत्पन्न हुआ, इसलिए वह मनुष्य की कंडीशन डाली। विशेषता यह है कि सातवीं पृथ्वी का नारकी तिर्यंच आयु को बांध कर विश्राम ले, तीरियंचों में उत्पन्न होता है, यानी मिथ्यात्व में जाने के बाद उसको तीरियंच आयु बंधेगी, बाद में अंतर्मुहूर्त के बाद मरेगा, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार छह अंतर्मुहूर्तों से कम 33 सागरोपम कृष्ण लेशा का नहीं, कृष्ण लेशा वाले मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है। यहाँ लिखा ना किन्न नील काउलेशिय मिथ्या दिखी उत्कृष्ट अंतरम, कृष्ण लेशा का अंतर नहीं बता रहे, कृष्ण लेशा वालों में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है। चार अंतर्मुहूर्तों से कम, अभी वहां 33 सागर वाले के लिए बाद में आयु बंध और फिर विश्राम के दो अंतर्मुहूर्त बढ़ाए थे, वो या डायरेक्ट पहले आयु बांधी मिथ्यात्व में गया अंतर्मुहूर्त में मरा। चार अंतर्मुहूर्त से कम 17 सागरोपम नील लेशा का नहीं, नील लेशा वालों में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है, तथा चार अंतर्मुहूर्तों से कम अनेक वचन करना, 7 सागरोपम कापोत लेशा का नहीं, कापोत लेशा में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार असंयत समय दृष्टि का भी अंतर कहना चाहिए, यानी पहले एक बार समय तो प्राप्त करा लो, मिथ्या तो मिलाओ, फिर अंत में फिर समय के प्राप्त। विशेषता यह है कि कृष्ण लेशा वाले असंयत सम्यक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 8 अंतर्मुहूर्तों से कम, क्योंकि समय तो प्राप्त किया फिर मिथ्या तो में आया, इसलिए वो बाद में बढ़ाने उसके 33 सागरोपम नील लेशा वाले असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 5 अंतर्मुहूर्तों से कम 17 सागरोपम, यहाँ 5 ही लिया, एक ही अंतर्मुहूर्त बढ़ाया, क्योंकि उसको सम्यक्त्व के साथ ही उसमें से निकाल सकते हैं, यानी वहाँ सम्यक्त्व में अंतर्मुहूर्त रहकर मरा, उसको फिर मिथ्यात्व में लाने की जरूरत नहीं है। और कपोत लेशा वाले असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 5 अंतर्मुहूर्तों से कम 7 सागरोपम होता है। अब यहीं रुकेंगे, मिथ्या दृष्टि का तो हो गया, किसको नहीं, नहीं कापोत और नील वाले के लिए फिर लाने की जरूरत नहीं, असंयत हो गया, असंयत का अंतर देख रहे, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व में लाना है, पर आयु तो पहले बांधी थी उसने, मिथ्यात्व की तो बात पहले पता ही थी कि चौथे वाले का अंतर कब होगा,
जब वो मिथ्यात्व में जाएगा,
हाँ पहली बार शुरू हुआ और लास्ट में सम्यक से हुआ अंतर समाप्त हुआ, पहले आयु बांधी उसने, हाँ मनुष्य आयु बांधी, रुकेंगे जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो